हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवत गीता इज ए लिविंग शास्त्र, ये जीते जी आदमियों को मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्णा इंस्ट्रक्टेड टू गीता टू अर्जुन व्हेन ही वाज इन ए बैटल फील्ड एंड ही वाज अबाउट टू स्टार्ट हिज ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय एज ए फाइटर एंड ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी परफेक्टली। दैट्स ऑल, अपने कर्तव्य को ठीक तरह निभाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, जिंदा को, जीते जागते को। सो गीता इज ए लिविंग शास्त्र, इज ए लिविंग कोड ऑफ लाइफ, हाउ वी शुड डू अवर वर्क परफेक्टली। अपने काम को हम कितना अच्छी तरह से कर सकते हैं उसके लिए गीता की शिक्षा है। तो काम को अच्छा नहीं कर सकते हैं उसका कारण क्या है? दो चीजें हैं जो हमको अच्छा काम नहीं करने देती हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? पांचवें अध्याय का एक श्लोक है, आप निकालिए, आप सबके पास भगवत गीता है। उस श्लोक को मैं, उस श्लोक के ऊपर जब बोलता हूं तो कहता हूं इट इज ए लिविंग भगवत गीता, क्योंकि उसमें शब्द जो है वो लिविंग है। श्लोक का नंबर मैं समझता हूं 24 है, देख लीजिए 24 है कि नहीं, तो मैं 5 go after 20 then I'll tell you exactly what is the 223 so recite after me shaknoti haiva yah shodham prak sharira vimokshanat काम क्रोध उद्भवं वेगम सयुक्त ससुखी नरः। नाउ 1 मिनट जस्ट टेक योर टाइम टू सी दी वर्ड्स एंड सी हाउ मेनी वर्ड्स यू नो इन योर लैंग्वेज। आप फिफ्थ चैप्टर 23rd वर्स, पांचवें अध्याय का 23rd श्लोक, और आज का टॉपिक है भगवत गीता लिविंग शास्त्र फॉर ए लिविंग पर्सन, फॉर लिविंग ए पीसफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। उसके लिए इस श्लोक को आप 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान दो कि आपको अपनी भाषा में कितने शब्दों का अर्थ आता है। जस्ट लुक फॉर ए मोमेंट। आइए माता जी, आइए बैसो। शक्नोति हिंदी में कहते हैं हो सकता है, हो सकना, शक्नोति हो सकना, ठीक है ना, हो सकता है। शक्नोति इह, ये कहते हैं इस दुनिया में, इह मीन्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जिसमें अभी हम रह रहे हैं। बैठिए माता जी। शक्नोति इह, ठीक है, इस दुनिया में, यह कोई भी आदमी। शोढ़ुम शब्द जो है, यह शब्द शायद आपको नहीं आए अपनी भाषा में। शोढ़ुम का अर्थ है टॉलरेट, वन हु कैन टॉलरेट, जो इसको सहन कर सकता है। शोढ़ुम सहन करना, सहनशीलता, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसका, जो टॉलरेट कर सकता है इस दुनिया में, कब तक, कब, प्राक शरीर विमोक्षणात्। अब शरीर का तो अर्थ सबको आता है ना, और विमोक्षणात् का अर्थ है खत्म होने से पहले, और एक शब्द रह गया कौन सा, पहला प्राक, प्रकृति का दिया हुआ यह शरीर। यह शरीर हमारा किसने दिया है, प्रकृति ने, प्रकृति मां है जिसने यह शरीर बनाया है। और बीज किसने दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने, अहम बीज प्रदापिता। बीज आत्मा है जो भगवान श्री कृष्ण देता है, और ये शरीर पूरा प्रकृति माता देती है। जैसे संसार में भी बच्चा मां के गर्भ में बीज पिता का है और पूरा शरीर माता बनाती है 9 महीना,
तो शरीर माता बनाती है पूरे का पूरा, केवल एक बीज है वो पिता का है। तो ये भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदा पिता हूं और शरीर प्रकृति ने दिया है, प्राक शरीर विमोक्षण। तो जब तक ये प्रकृति का दिया हुआ शरीर चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तब तक अगर आप सहन कर सकते हो, इफ यू कैन टॉलरेट बिफोर गिविंग अप दिस बॉडी, क्या टॉलरेट करना है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उद्भव होता है जो वेग, वेग किसको कहते हैं? वेग जिसे तूफान आता है ना उसको बोलते हैं वेग। हवा चल रही हो ठीक है, लेकिन हवा इतनी ज्यादा चले कि हम बर्दाश्त नहीं हो उसको वेग बोलते हैं, विथ फोर्स, वेग। वेग किसका वेग? काम और क्रोध का वेग। उद्भव, उद्भव होता है। ये काम क्रोध कहां से उद्भव होता है, इसके लिए तीसरे अध्याय में जाओगे तो आपको भगवान का एक उत्तर मिलेगा, काम क्रोध रजोगुण उद्भव। ये कहां से उद्भव होते हैं? रजोगुण से उद्भव होते हैं। और रजोगुण किसको कहते हैं? रजो रागात्मक लोभ संगे न बंधनात्, लोभ से रजोगुण उत्पन्न होता है। इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने का लोभ होता है तो रजोगुण में आदमी होता है, और जब वो नहीं तो काम हो गया रजोगुण में कुछ प्राप्त करने की चाहना, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होगा। और ये दोनों का वेग है, वेग का क्या अर्थ है? ये सदा के लिए रहते नहीं है, आएंगे और चले जाएंगे। भाई वेग सदा, तूफान सदा तो नहीं चलेगा ना। इट्स नॉट, यू कैन नॉट हैव दी स्टॉर्म ऑल द टाइम्स, नो इट्स नॉट फॉर ऑल टाइम्स। वेग है तो क्रोध भी आप सारा दिन क्रोध में तो नहीं रह सकते, इट्स ओनली फॉर ए मोमेंट्री। तो उसको बर्दाश्त कर सकोगे अगर तो कैसे बर्दाश्त करेगा अगर अर्जुन? कृष्ण इफ अर्जुन आस्किंग हाउ कैन वी टॉलरेट दिस, देन ही से युक्त, यू शुड बी यूनाइटेड विद कृष्ण। युक्त मीन्स, अब देखो ऐसे होता है क्या भाई, तेज हवा लगने लगे तो क्या करना चाहिए भाई? कोई इस चीज स्थिर है उसको पकड़ लेना चाहिए। तो हम नहीं, अब समुद्र में बहुत तेज अगर तूफान आ जाए तो जहाज को लंगर से बांधा हुआ है तो नहीं जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। सो युक्त, अगर भगवान से हम जुड़े हुए हैं तो ये वेग हमको उड़ा के लेके नहीं जाएगा। सो सयुक्त, वो आदमी भगवान से जुड़ा हुआ मानना चाहिए जिसके कारण वो इस काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है। ही कैन टॉलरेट दी लस्ट एंड एंगर, दी ऑनस्लॉट ऑफ लस्ट एंड एंगर व्हिच इज ट्रांजिएंट बट इट कैरीज अवे इवन दी मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन, टेक्स अवे द इंटेलिजेंस ऑफ वाइज पर्सन। विपिश्चित, विपिश्चित मतलब बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो फिर उसको फायदा क्या होगा? व्हाट इज द लाभ इफ ही टॉलरेट, व्हाट इज द बेनिफिट? स सुखी न रहा, तो आप दुनिया में सुखी रह सकते हो। सो सुखी रहने का ये फार्मूला है, हाउ कैन यू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? लर्न टू टॉलरेट, काम क्रोध के वेग को सहन करना सीखो, उसके साथ बह मत जाओ, आप अपना स्थान ही छोड़ के चले जाओगे फिर। सो काम क्रोध के वेग को कैसे हम रोक सकते हैं? जब हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करेंगे। ओनली द प्रोसेस इज इफ यू गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड देन यू कैन कंट्रोल, देन यू कैन इजीली कंट्रोल ऑल दीज टू ग्रेट। इन दोनों को भगवान ने क्या कहा है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र महाशनो महापापमा। ये दोनों क्या है, काम और क्रोध? ये बहुत बड़े, कभी भी महाअश्नो का अर्थ क्या है पता है? अश्नो कहते हैं खाने को, महाअश्नो का मतलब पेटू आदमी, कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरे, उसको बोलते हैं महाअश्नो। महाअश्नो मीन्स यू गो ऑन फीडिंग इट नेवर सेटिस्फाइज। तो काम इच्छा ऐसी है उसको जितनी पूरी करोगे उतनी बढ़ेगी, आप कहोगे खत्म हो जाएगी, नहीं हो सकती है। और दूसरा इसके लिए शब्द क्या है? महापापमा, और सबसे बड़ा पाप कराता है। दुनिया में आदमी क्रोध में आता है तो बड़े से बड़ा पाप करता है, अपने सगे संबंधी माता पिता का भी आदर नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए कुछ कह देता है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो दुनिया में पाप का कारण कौन है? भगवान ने कहा ये काम और क्रोध पाप का कारण है, और लोभ ये नरक का द्वार है। ये तीन नरक के द्वार हैं, क्या क्या? काम क्रोध मोह, तो काम और क्रोध उधर नरक के द्वार बताए। तो इस दुनिया में नरक में नहीं जाना है। नरक मीन्स एक्चुअली वेयर यू सफर। सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू सफर मीन्स यू शुड बी हैप्पी। तो हैप्पी होंगे तो सफर नहीं करें। तो कुछ कैसे होंगे, जो काम और क्रोध के वेग को सहन करेंगे। इसमें बोला सहन लिखा है, और एग्जैक्टली दूसरे अध्याय में भगवान ने तांस तितिक्ष्व भारत, तितिक्ष्व का अर्थ भी यही है, सहन करना। यू लर्न टू टॉलरेट। इसलिए कहते हैं सत्संग में जाने से लाभ क्या है। लोग कहते हैं आप जाते हो ना सत्संग में, यू आर गोइंग फॉर सत्संग, कथा कीर्तन करते हो, आपको लाभ क्या है। यूअर टॉलरेंस पावर इंक्रीजेस, आपका टॉलरेंस का पावर इंक्रीज होगा। दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ सत्संग। दिस इज योर यार्ड स्टिक, आर यू एबल टू टॉलरेट। काम क्रोध को आप टॉलरेट करने का जितना आपका बढ़ता जाएगा यार्ड स्टिक, उतना आप समझो कि यू आर एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। इट इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। दूसरे आदमी को आप दुखी होते देखते हो, लेकिन आप दुखी नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, और जानते हैं कि भगवान हमारे पास हैं। भगवान कहते हैं मई सन्यस्य सर्कर्माणि, सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। कहते हैं मैं सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स है तीसरे अध्याय का। मई सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत मई सन्यस्य आत्मचेतसः, मेरे ऊपर सारे काम छोड़ दो। काम सब करो लेकिन छोड़ो मेरे ऊपर। तो भक्त भक्ति करने से, आपका भागवत भगवत गीता सुनने से, भगवान का नाम जपने से दो चीजें होंगी। टॉलरेंस पावर बढ़ेगा, यू विल टॉलरेट व्हिच ऑर्डिनरी पीपल गिव इन। दूसरे लोग रोने शुरू होंगे, आप रोएंगे नहीं। दूसरे जो लोग दुखी होंगे आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, गुजर जाएगा ये भी, भगवान है ना हमारे साथ। एंड सेकंड थिंग, देयर इज चेंज इन योर लाइफ। ए पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगी सत्संग में आने से। बाय कमिंग इन सत्संग ए पॉजिटिव चेंज विल अकर इन योर लाइफ। यू विल फील सेटिस्फाइड दैट वी आर ऑन ए राइट पाथ। सम अनवांटेड अनर्थ disappear from your life, उसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ means unwanted things, the things which disturb you, they disappear from your life. You have to make a separate endeavor for that. उन चीजों को छोड़ने के लिए कुछ अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। भगवान से जितने हम निकट जाएंगे उतने अनर्थ हमसे दूर जाएंगे, जितने हम भगवान से दूर जाएंगे उतने अनर्थ हमारे को नजदीक आएंगे। ये inversely proportional है। The more you go near to God, the far away all unwanted things go. They just run away from you. You have not to try to. आप रोके बोला नहीं, हम नहीं रोकेंगे. They cannot stop there. Krishna है सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां माया नहीं अधिकार, जहां सूर्य तहां नहीं अंधकार। सूर्य उगने के बाद sun rises, there is no darkness. So darkness cannot, darkness है क्या? Absence of the sun. Absence of the sunlight is darkness. अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। It is nothing except that there is no sunlight. So similarly, ignorance is nothing but it is absence of Krishna consciousness. अज्ञानता ये है कि हमारे को ज्ञान नहीं है। जैसे ही भगवान का ज्ञान हो जाएगा अज्ञानता अपने आप खत्म हो जाएगी, अंधकार अपने उसको निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यू नॉट टू मेक अ सेपरेट एंडेवर फॉर दिस। सो आपके सत्संग से एक टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। घरों के अंदर छोटी मोटी बातों के ऊपर आप विचलित नहीं होना चाहिए। यू नॉट गेट एंग्री बिकॉज यू लर्न फ्रॉम दिस, वी हैव टू टॉलरेट इट। हो सकता है मैंने गलती नहीं की है, फिर भी अगर किसी ने कह दिया नो प्रॉब्लम, After a moment he will forget this. Why should I keep it? कई बार लोग गुस्सा करते हैं, उनको भूल जाता है लेकिन हमको नहीं भूलता है। So we are carrying it with us. Past के हमसे जो experience bad हुए हैं उनको we carry that in our subconsciousness. That is the cause of our suffering. और फ्यूचर के अनसर्टेनिटी वी आर ऑलवेज वरीड एंड एंग्जियस अबाउट, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, अनस्टेबिलिटी और पास्ट बैड एक्सपीरियंस वी कैरी ऑल दो, देयरफॉर इन प्रेजेंस वी आर नॉट डूइंग अवर वर्क प्रॉपरली। जो प्रेजेंट में आपको इस वक्त काम करना है वो आपका दिमाग आधा तो पास्ट की परेशानी से घरा हुआ है और आधा भविष्य की फ्यूचर की चिंता से, तो अभी आपके आज काम कर नहीं पाएंगे। एंड दिस इज द रीजन पीपुल आर नॉट प्रोडक्टिव बिकॉज दे आर कंप्लीटली दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। पास्ट गुजर गया, वापस आएगा नहीं। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, फॉरगिव फॉरगेट, लर्न ए फॉरगिव फॉरगेट। और फ्यूचर भगवान के ऊपर भरोसा रखो। फॉरगेट, फॉरगिव फॉरगेट फॉर फ्यूचर, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जो होगा हमारे अच्छाई के लिए होगा। भगवान हमारा सुहृद है, इज अवर वेल विशिंग फ्रेंड, ही विल नेवर गिव अस ट्रबल मोर देन वी कैन टॉलरेट, ही विल गिव विद इन द लिमिट, बट दैट्स ऑल्सो फॉर अवर प्यूरिफिकेशन। कुछ कष्ट भी अगर उसकी तरफ से आ रहा है तो हमारे अपने कर्मों का है, हमारी शुद्धि के लिए, इट्स फॉर अवर क्लीनिंग, फॉर अवर प्यूरिफिकेशन। देखा, बर्तन साफ करना होता है, आजकल का बर्तन ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में पीतल के बर्तन होते थे, वो साफ नहीं होते तो उनको गर्म करना पड़ता था, आग में गर्म करते, शुद्धि उसकी बर्तन की, आग डालते थे अंदर तो उससे शुद्धि हुआ करती थी। कभी कुत्ता वुत्ता बर्तन को बाहर छूता था ना तो धोने से शुद्धि नहीं होती थी, उसमें आग डालते थे कि उसकी शुद्धि हो। तो आग डालने से, तपस्या करने से शुद्धि होती है, तो कोई कष्ट आता है तो शुद्धि होने के लिए आता है। भाई दर्द होता है तो अंदर दर्द तकलीफ है, उसकी जानकारी हमको देता है, सो इट्स अ गुड अलार्म। तो कोई परेशानी आती है, हनुमान जी कहते हैं जब मैं चाहता हूं वो पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा राम जी ने पूरी की, और जब मैं चाहता हूं नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि राम जी की इच्छा पूरी हुई। वो नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं हुआ, तो इज हैप्पी, सो व्हाई शुड आई शुड वरी। दोनों हालत में मैं खुश हूं, मेरी इच्छा पूरी हो या भगवान की हो, बात तो एक ही है। इज नॉट गिविंग इट मीन्स इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी एंड इज गिविंग। तो दुख भी भगवान किसी को नहीं देता है, हमारे अपने कर्मों का है, हमको भोगना पड़ेगा। तो रो के भोगे या खुशी से भोगे, भोगना तो आपको ही है। तो ये श्लोक विशेष रूप से हमको सिखा रहा है कि दुनिया में सुखी रहना है तो काम और क्रोध के वेग को सहन करना सीखो, आपका टॉलरेंस पावर बढ़ना चाहिए। एक महात्मा ने के पास कोई गया कि महाराज कुछ ऐसा हमारे को अच्छा शिक्षा लिख के दो। महाराज ने पर्चे के ऊपर कोई लिख दिया चीज, बोला तुम्हारे को जब बहुत बड़ी परेशानी हो तब इसको खोल के पढ़ना, तब वह घर में रख देना। एक बार बहुत सालों के बाद बहुत कष्ट आ गया परिवार में, याद आया महाराज ने कौन सा चिट्ठी दिए, खोल के पढ़ूं। खोला, लिखा था ये भी गुजर जाएगा कि हमेशा थोड़ी रहेगा, और दो चार दिन के बाद गुजर गया। इट नेवर रिमेन सेम ऑलवेज। सो बर्दाश्त कैसे करना सीखे काम और क्रोध को, दिस टेक्निक वी हैव टू लर्न हाउ टू। और यहां कहता है युक्त, भगवान कहते हैं इफ यू आर यूनाइटेड विथ मी देन यू विल नॉट बी कैरिड अवे। तो भगवान से कैसे यूनाइट हो, भगवान से जुड़ के कैसे रहे, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें। जुड़ के रहने का मतलब भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। वी शुड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे मानो घर में बेटे को परेशानी है तो एकदम मां बाप के पास जाएगा ना, उनका संबंध है, उधर ही जाएगा ना। स्त्री को परेशानी है तो पति को जे पास जाएगी ना, ये नेचुरल है। अगर प्रजा को परेशानी होगी तो राजा के पास जाएगी, यू हैव सम प्रॉब्लम यू हैव टू गो टू द पुलिस और गवर्नमेंट, नेचुरल फिनोमेना है। तो जिसके पास तो भगवान के साथ हमारा संबंध होगा तब उसके पास जाएंगे ना। अभी मेरा मित्र है अर्जुन का भगवान फ्रेंड है तो वो तो जाके बोलेगा फ्रेंड को मेरी समस्या है मेरा समाधान करो। तो भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होना चाहिए। द पर्पज ऑफ डिवेलप अवर डिवोशनल सर्विस इज टू बिकम युक्त टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड। इट मीन्स वी शुड establish रिलेशनशिप विद गॉड। कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। ये तीन शब्द है गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी में, द थ्री वर्ड्स, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आपने सुना है तीनों शब्द, इसके ऊपर कभी चर्चा की है? दिस इज द हाइएस्ट फिलोसॉफी ऑफ वैष्णव सिद्धांत चेतना महाप्रभु की फिलोसॉफी। तीन शब्द है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। आसानी से इसको आप पहले कॉमन भाषा में जस्ट अंडरस्टैंड इन ए कॉमन लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड इन योर लोकल लाइफ। संबंध का मतलब है जैसे दो परिवारों में एक लड़की है एक लड़का है, उनका जब आपस में बात चलती है तो बोलते हैं ये हमारे संबंध ही है, वी आर एस्टेब्लिशिंग संबंध विद दिस परिवार, यही कहते हैं ना। तो उस लड़के और लड़की का संबंध होता है, उसको बोलते हैं संबंध हो गया। अब संबंध होने से हुआ क्या, लड़की सोचेगी मेरे जीवन में यही लड़का अभी आएगा, लड़का सोचेगा अभी ये लड़की ही मेरे जीवन में है, तो संबंध का मतलब और कहीं देखना बंद हो गया। तो संबंध से एक क्या होता है कि मेंटल पॉल्यूशन खत्म हो गई, दिमाग से और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है कि मेरा जीवन यहां पूरा होना, अब मेरा तो ये फोकस हो गया। अब अभिधेय का मतलब है सेवा में लगना, अब से संबंध में सेवा नहीं है, फिर शादी होगी तब सेवा में लगेगा, भाई तभी सेवा करना है उनकी, तब करेगा जब शादी होगी। तो अभिधेय का मतलब एंगेजिंग इन दी लविंग सर्विस। लेकिन लड़की लड़के का संबंध हुआ, उनकी शादी हुई, सेवा शुरू हो गई, लेकिन काहे के लिए, अल्टीमेटली क्या भाई प्रयोजन क्या है उसका, संतान होना चाहिए ताकि हमारी परंपरा चले। तो प्रयोजन क्या है संतान का, प्रयोजन ये है भारत में, भारत मीन्स वैदिक संस्कृति में मैरिज का उद्देश्य होता है वंश परंपरा चले। ये पाश्चात्य देशी का मैरिज भोग प्रदान है, वेस्टर्न मैरिज इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि बच्चों को वो पालते ही नहीं। लेकिन वैदिक संस्कृति के मैरिज जो है वो संतान प्राप्ति उसका उद्देश्य है, वह वंश परंपरा चले इसका उद्देश्य है। हर स्त्री माता बनना उसका गौरव, माता बनने में मात्र देवो भव बताया गया है वेदों में कि माता सबसे ज्यादा पूजने हैं। तो बेसिकली सब कॉन्शियस में माता बनना ही उसका उद्देश्य होता है, पत्नी बनना उसका उद्देश्य नहीं है, पत्नी वो बनती है माता बनने के लिए। तो उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन माता बनना है। तो संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करना कैसे होगा, जब उसके बारे में सुनेंगे, व्हेन वी हियर अबाउट कृष्ण। जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, केवल कथा सुनी थी उसके बारे में, कुछ भीष्म महाराज के राज में गए थे, उन्होंने जाके कहा कृष्ण इस वक्त द्वारका में रहते हैं, बहुत बड़े सुंदर हैं, बहुत वीर हैं, और रुक्मणी ने अपना संबंध उनके साथ स्थापित करने का निर्णय ले लिया और फिर चिट्ठी लिख के पंडित जी को भेज दिया कि जाके उनको समाचार दो कि उनके अलावा और मैं किसी के साथ अब संबंध नहीं रखूंगी। तो ये हो गया संबंध। भगवान के बारे में जब सुनेंगे वन वी हियर अबाउट कृष्ण देन वी विल डेवलप अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। तब हम कहेंगे हमारे जीवन में यही होना चाहिए और हमारे जीवन में फिर हम फिक्स हो गए, फोकस हो गए। देन पंडित जी चाहिए चिट्ठी ले जाने वाला, देट इज गुरु। तब गुरु हमारे को सेवा में लगाएगा, भगवान की सेवा में गुरु लगाएगा। चतुर्विधा भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तम हरि भक्त संगम कृतवा एव तृप्तम भजतु सदैव वंदे गुरु। तो ये गुरु का काम है, शिव ग्रहार धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। गुरु जी कहेगा ठाकुर जी घर में रखो, श्री विग्रह की पूजा करो, मंदिर का मार्जन करो, प्रसाद बनाओ। ये सेवा में लगा दिया ना, पहले सेवा में नहीं लगे थे, पहले केवल जाना था, अब सेवा में लग गए। अब सेवा में लग गए तो प्रयोजन क्या है, उनसे प्रेम हो जाए। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है, कृष्ण का प्रेम हो ये प्रयोजन है हमारे जीवन का। तो संबंध जब भगवान से स्थापित होगा तब तो हम उसको जाके कहेंगे ना कि हमारी समस्या ये हमारी परेशानी है, तो वो समस्या का समाधान करेगा। प्रभुपाद ने जब वृंदावन के अंदर मंदिर को स्थापित किया कृष्ण बलनाम की डीटीज, तो बाहर खड़े होकर नाउ कृष्ण बलनाम इज हियर, इफ यू हैव प्रॉब्लम यू गो एंड टेल माय डियर सर दिस इज अवर प्रॉब्लम एंड दे विल सॉल्व। प्रभुपाद ने जाके उनको बोलो कि आप यहां है ना, आ गए हैं ना, आप उनके साथ जाके उनको बोलो हमारी समस्या एंड दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो ही वाज सो इंटीमेट एंड पर्सनल। तो भगवान से संबंध स्थापित करेंगे तो भगवान से युक्त हो जाएंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान को अपनी समस्याएं सुनाएंगे और भगवान उसका समाधान करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो काम क्रोध को कम करने के लिए भगवान से संबंध स्थापित करना जरूरी है। भगवान के अभाव में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप विथ गॉड वी आर एक्चुअली कैरिड अवे बाय काम एंड क्रोध। भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। और संबंध के बाद प्रियो अभिधेय बोध, ये ध्येय क्या है? अब तीन कभी आप एक भजन आप गा रहे थे, एक और भजन कभी आप गाते हैं, जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गाते हैं कभी रूपिणी राधे का गाते हैं कि नहीं? यू सिंग दिस भजन समटाइम। दीज आर दी थ्री नेम ऑफ थ्री डीटीज, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। मदन मोहन टेम्पल वॉज एस्टेब्लिश बाय सनातन गोस्वामी, गोविंद देव जी वॉज एस्टेब्लिश बाय रूप गोस्वामी, एंड गोपीनाथ वॉज एस्टेब्लिश बाय मधु पंडित, बट गोपीनाथ वॉज नाउ दीज थ्री डीटीज आर कॉल्ड द डीटीज ऑफ संबंध अभिधेय एंड प्रयोजन। मदन मोहन संबंध के ठाकुर हैं और सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य हैं, रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य हैं, गोविंद देव जी अभिधेय की ठाकुर हैं और गोपीनाथ जी प्रयोजन के ठाकुर हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के आचार्य। ये हमारी वैष्णव फिलॉसफी। इसलिए कभी वृंदावन जाएंगे और ये तीनों ठाकुर वृंदावन में नहीं है, इन तीनों का एक दिन में दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन के समान है। गोविंद देव जी जयपुर में है, गोपीनाथ जयपुर में है और मदन मोहन करौली में है, ये तीनों को एक दिन में जाके दर्शन करते हैं। और तीन समाधि सनातन गोस्वामी वृंदावन, रूपा गोस्वामी वृंदावन में और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे है। ये हमारे पूर्वज आचार्य हैं जो संबंध के आचार्य हैं और ये संबंध के हमारे ठाकुर रा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये जब हमारे जीवन में ये चीजें आएंगी तब ये काम क्रोध ये हम जीवन में बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ये हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। किस चीज के ऊपर ज्यादातर क्रोध कम, आदमी को क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है। The way we like, we not happening like that, we become upset. फिर हम सोचेंगे जैसे कृष्ण चाहे वैसे होना चाहिए, हमारी इच्छा नहीं भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब हमारी इच्छा नहीं भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो तो हमारे क्रोध की कोई रहेगा नहीं, there's no place for our anger anymore. तो काम क्रोध को भगवान की इच्छा पूर्ण हो, हमारी इच्छा नहीं। क्रोध आता है when somebody is obstructing our desire, क्रोध इसलिए आता है कि इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन भगवान, जब भगवान के साथ संबंध है तो कोई चीज की कमी क्यों होगी? तो हम कहेंगे हम तो पूर्ण है ना अभी, आप भगवान के साथ संबंध है तो कोई चीज कम नहीं है, तो काय के लिए दुखी हो? There's no need for becoming angry. तो ये रिलेशनशिप भगवान से डेवलप हो, सेवा हो। व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण जपते हैं, इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैंटिंग? वो हे एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधारानी, हे ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण, हे ऑल ब्लिसफुल
आनंदमय श्री राम प्लीज एंगेज मी इन यूर सर्विस।
तो ये हम सेवा के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। सो सेवा के लिए प्रार्थना, जब सेवा शुरू हो जाएगी देन वी हैव नो टाइम एक्चुअली टू बिकम एंग्री। भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारे पास ये सब चीज के लिए, लेकिन एंगर को ये माना नहीं लेना कि आपके बच्चों के ऊपर आपको आपको बच्चों को डांटने के लिए क्रोध करना पड़ेगा। वो क्रोध आपको छोड़ना नहीं, उसको क्रोध नहीं कहते हैं। डिफरेंस क्या है, क्रोध में एक शब्द दूसरा है संस्कृत हिंदी में, क्षोभ और क्रोध। क्षोभ का मतलब है, क्रोध का मतलब है व्हेन यू आर एंग्री विद समबडी यू वांट टू डैमेज हिम, यू वांट टू हार्म हिम। आप जिससे क्रोध करते हैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर जब आप क्रोध करते हैं वो क्रोध नहीं होता है, वो आप उसका भला चाहते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड क्रोध, वो क्षोभ है। उसका भला चाहते हैं इसलिए उसको डांटते हैं। तो हमारे हृदय में उसका अहित नहीं है। क्रोध दूसरे के ऊपर अहित होता है, क्रोध में उस अपने बच्चे का अहित नहीं होता है। तो इसलिए मां बाप को बच्चे के ऊपर क्रोध करने का अधिकार है, लेकिन वो क्रोध क्रोध नहीं है, उसके हित के लिए ताड़ना है, ताड़ना है, थोड़ा डांटना है, तो वो करने का उसको अधिकार है। गुरु को शिष्य के ऊपर ताड़ना करने का अधिकार है, क्योंकि वो उसके हित के लिए करता है, उसका बुराई नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहे। क्रोध तब खराब है जब आपको जलाए और आप दूसरे को उससे जलाना चाहो। When it burns you and you want to burn somebody else, तो ये क्रोध रहेगा, ये क्रोध खत्म नहीं करना है। लेकिन वो क्रोध खत्म करना है, किसी का हमको अहित नहीं करना है। Why should we why should we think bad about something or want to damage him by our anger? Why? To burn the anger before it burns you. आपको जलाती है, दूसरे को क्या? आप जिसके प्रति गुस्सा कर रहे हो, क्रोध है, वो तो यहां है नहीं, तो आप अपने को ही जला रहे हो, वो तो यहां है ही नहीं ना। So why to burn ourselves with anger? और फिर ये कहावत याद रखो, जिसके आपको एंगर आती है ना, उसका आप मुंह नहीं देखना चाहते हो, इसका मुंह देखना ठीक नहीं है, उसके ऊपर इतना क्रोध है, लेकिन सारा दिन उसको दिल में उठा के क्यों चलते हो? जिसको देखना ही नहीं चाहते हो उसी का चिंतन क्यों करते हो? उसको उठा के बाहर फेंक दो ना। आई डोंट वांट टू सी हिम बट ऑल टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ हिम, व्हाट इज दिस? जिसको देखना ही नहीं चाहते हो उसको दिल में क्यों उठा के घूम रहे हो? निकाल फेंक दो ना। यू कीप हिम देन यू ऑलवेज सफर। सो ये लिविंग भगवद गीता है, कैसे हम, या आप लोगों को ये श्लोक अथवा नहीं ऐसे क्यों निकला, घरों के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध होता है, दो दो दिन बातें नहीं होती है, खाना पीना बंद हो जाता है, ये ठीक नहीं। वी हैव टू बी रियली कूल एंड टॉलरेंट, स्माइल, चलो गुजर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है मेरे क्रोध करने से, क्या फर्क पड़ता है?
हस्बैंड का ऊपर क्रोध जाएगा तो उनको तो छोड़ना नहीं
चाहिए। हरे कृष्णा, हस्बैंड के ऊपर क्रोध नहीं आना चाहिए।
होता है ना संसार का लाइफ में, कभी कभी तो आ जाता है ना,
क्रोध को छोड़ना
है। ये बड़ा अच्छा है, क्रोध को छोड़ना है, हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, ये ठीक है, दिस वेरी गुड गुड आंसर। हस्बैंड एंड वाइफ इज ए साल्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड एग्रीमेंट, दैट एक दूसरे का भला करना है, तो क्रोध नहीं करना है। लेकिन क्रोध क्यों आता है, इसको एक हम एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा। जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपने रात को जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो एक लाइट डिम करेगा, दूसरी का लाइट ऊपर होगा, तो दोनों गुजर जाएंगी, दोनों ऊपर करेगा तो एक्सीडेंट होगा। तो एक स्त्री पुरुष ने कहा कि हम घर में कभी हमारे झगड़ा नहीं हुआ, बोला ये हो नहीं सकता है, गृहस्थी हो, घर है तो जरूर लड़े होंगे। बोला गुस्सा नहीं करते हैं? बोला गुस्सा करते हैं। फिर बोला लड़ाई लड़ते क्यों नहीं है? बोला जब वो गुस्सा करता है तब मैं चुप हो जाता हूं, और जब मैं गुस्सा करता हूं तो वो चुप हो जाता है, झगड़ा झगड़ा होता ही नहीं है। गुस्सा करते हैं लेकिन झगड़ा नहीं करते, क्यों? बोला एक जगह जब उसकी लाइट ऊपर होती है तो मैं डिम कर देती हूं, बस खत्म, अपने आप साइड से गुजर जाएगा, और जब मेरी लाइट ऊपर होती है तो वो डिम कर देता है। यही ट्रैफिक का रूल है कि लाइट अपने डिम कर दोगे तो सामने वाला साइड से गुजर जाएगा, आराम से देख लेगा रास्ता। दोनों की लाइट ऊपर होगी तो कुछ नहीं दिखेगा दोनों साइड में, तो एक्सीडेंट होना संभावना है। इसलिए एक जोर से बोले तब दूसरा प्रेम से बैठकर सुने, और ऐसे बैठे सुने आराम से, वो थक जाएगा, बोले क्रोध थोड़ा रहेगा तो नहीं, वो थक जाएगा, क्या वो फिर क्या पता क्या बोलेगा, क्या देख रहे हो आखिर, यही क्रोध का लास्ट वर्ड विल बी, क्या देख रहे हो, फिर और मुस्कुराने जाए, ये हंस रहे हो, देन ही विल जस्ट बी, इसके इज एंगर विल बी ओवर, और जब पूरी हो जाए तब के बोले अब समाप्त हो गए, पानी लाऊं पियोगे, एवरीथिंग इज ओवर। और फिर ये अपने एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि जब मैं जोर से बोलूं तब आप आस्ते बोला करो, आपस में एक एग्रीमेंट लिख के रख लो कि हमको झगड़ा नहीं करना, गुस्सा जरूर करना
है।
यही मैं कहता हूं कि लोग बताएं क्यों करते हैं क्रोध आपको, आपको वो चाहते हैं कि यू मस्ट बिकम एंग्री, आप चिड़ोगे तो उसको मजा आएगा, फिर आप चिड़ोगे नहीं तो उसको फायदा क्या है, वो अपने आप बंद कर दे, चुप हो जाएगा।
लेकिन स्त्री जो बोलता है हस्बैंड सुनता ही नहीं है, उनकी वाइफ जो बोलते हैं हस्बैंड को, हस्बैंड चुप कुछ बोलता भी नहीं है लेकिन सुनता नहीं है वाइफ की।
अच्छा तो आप जोर से हरे कृष्णा बोला करो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं है, तब सुनेगा, तब बोलेगा ये क्या बोल रही हो। और जब ऐसा माहौल हो, नहीं सुन मानो आज थोड़ा मूड ठीक नहीं है, चलो ये जाए तो अच्छा है यहां से, अभी उस दिन आपको बहुत अच्छा मंत्र सिखाता हूं, अब बोलना आइए हम पांचवा अध्याय भगवद गीता का पढ़ते हैं, बैठ के बोले तुम पढ़ो मैं जा रहा हूं। हाँ क्या कहेगा,
ऐसे भी तो बोलेंगे तब क्या सलूशन लाए,
तो थोड़ी देर के लिए जाएगा भगवत गीता पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो शांत हो जाएगा अपने आप। एनीवे लाइफ इज लाइक दैट, सो वी हैव टू बेसिकली, वैदिक सिविलाइजेशन ऐसी नहीं थी, अब बहुत हमारी ऐसी कि आप भी काम पे जाते हो वो भी काम पे जाता है, दोनों परेशान होके आते हो, परेशानी दुनिया की होती है और आपस में निकालनी पड़ती है आपस में। तो पहले जमाने में पुरुष बाहर जाता था, तो इसलिए जब घर में आता तो पत्नी उसको बहुत सेवा करती ताकि बेचारे का सारे दिन की परेशानी खत्म हो जाए, तो घर के अंदर आने से परेशानी खत्म होनी चाहिए, या घर में आते ही परेशानी शुरू हो तो ठीक नहीं है ना। एनीवे यू हैव टू, दिस प्रभुपाद सेड द एजुकेशन फॉर द गर्ल्स शुड बी, दे मस्ट नो द बेस्ट कुकिंग, अच्छा पकाना आना चाहिए, जवान से बांध के रखा जा सकता है पति को आराम से, अगर खाना आपका पकाना अच्छा है। शी मस्ट नो स्टिचिंग, अचानक बटन टूटा हुआ है बाहर जाने के समय पे और आपको नहीं लगाना आता है तो घर बिगड़ गया। एंड देन ही सेड एंड दे शुड बी टॉट हाउ टू लव एंड केयर फॉर द हस्बैंड।
अच्छा खाना पसंद नहीं है उनके लिए क्या
करें? नमक डाल दो ज्यादा।
नहीं, नहीं, नहीं।